ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय में कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर दूसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक इस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के बी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष महाअधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों सहित मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि न्यायालय देश के राष्ट्रपति को निर्देश दे। उपराष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राज्यसभा प्रशिक्षुओं के 6ठे बैच को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान की व्याख्या कर सकता है।
We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। इस दौरान बोहरा समुदाय के सदस्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने के पीछे वर्षों की मेहनत के बारे में बात की और कहा कि इस अधिनियम को लाने का प्रमुख कारण ये था कि प्रचलित प्रणाली से अधिकतर महिलाएं, विशेष रूप से विधवाएं पीड़ित हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। न्यायमूर्ति सोमेन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने हिंसा की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से कराने की मांग याचिका को खारिज कर दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य की मांग याचिका पर न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र है और यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र रूप से एनआईए जांच का आदेश दे सकती है। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने कुख्यात गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को हिरासत में ले लिया है। पासिया पर पंजाब में 14 आतंकवादी हमलों की कथित साजिश का आरोप है। हैप्पी पासिया पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का करीबी सहयोगी रहा है। वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, रिंदा और प्रतिबंधित आतंकी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ पंजाब में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। आज विश्व विरासत दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष की थीम है विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। ये दिवस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान और संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज देश के सभी संरक्षित स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। गुड फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारा सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में रविवार से ईस्टर समारोह शुरू हो जाएंगे। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब का आज प्रकाश पर्व है। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे 6ठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। एक निर्भीक योद्धा के साथ ही वे आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे। उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब में शब्द कीर्तन का आयोजन किया जाता है। IPL क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज बेंगलुरु में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सऊदी अरब के दम्माम में एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की शौर्या अम्बुरे ने अंडर-19 महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।